इंडियन वनडे टीम और टी20 टीम का हुआ है सिलेक्शन, तो चलिए उस पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। हैशटैग आकाशवाणी और तैयारी हो रही है, टीम जा रही है वेस्ट इंडीज और इस वाली सिलेक्शन पे। देखिए टेस्ट सिलेक्शन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइज की गुंजाइश ही नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि बहुत कुछ बदलाव होने वाले, और वैसे ही हुआ। वहां ज्यादा बदलाव हुआ है नहीं। जो टीम पिक की गई वो 16 मेंबर टीम फॉर टू टेस्ट मैच सीरीज मुझे लगता है कि ज्यादा होती है, क्योंकि उतने आप मौके दे नहीं पाते हैं, तो 15 भी काफी होते हैं। वैसे 14 से भी काम चल जाता है, लेकिन 16 आई थिंक इज वन टू मैनी, पर कोई बात नहीं, 18 से तो कम है। पहले तो 18 सेलेक्ट होते थे, अब बात करते हैं वनडे और टी20 की। अब इसमें कुछ बड़ी मजेदार सी बातें हैं। एक तो ये कि MS धोनी ने अपने आप को अनअवेलेबल किया, कहा कि मैंने ये टूर्नामेंट के लिए मैं नहीं अवेलेबल हूँ, मैं पैरामिलिट्री जो उनकी रेजिमेंट है जिसके वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उसमें मैं 2 महीने अभ्यास करना चाहता हूँ, उनके साथ बिताना चाहता हूँ, टेरिटोरियल आर्मी के साथ। सो विच इज़ वेरी गुड, ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन अब उस उनके जाने से इस टीम में क्या क्या बदलाव आए हैं। एक जो बड़ी चीज़ निकल कर आती है वो है कि दिनेश कार्तिक का नाम नहीं है। दिनेश कार्तिक आपका जो आखिरी वनडे मैच हुआ जो आपने खेला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, उस टीम का वो हिस्सा थे, आपने उनको केदार जाधव से पहले टीम में जगह दी। लेकिन अब जब बारी आई वेस्ट इंडीज के दौरे की तो आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब उनका जो चैप्टर है मेरे हिसाब से अब क्लोज हो चुका है। अब उनको दोबारा खेलते हुए वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं देखेंगे, आई डोंट थिंक इट्स लाइकली टू हैपन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बड़ी हैरानी होगी। और दूसरा एक था कि केदार जाधव, अब केदार जाधव के साथ आप वही सेम स्टोरी है, केदार से पहले आपने दिनेश को खिलाया लेकिन दिनेश को ड्रॉप किया और केदार को टीम में रखा, और व्हाट डज इट टेल अस। ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि केदार के साथ सी आई हैव थोड़ी सहानुभूति है मुझे, केदार को आप इतनी जल्दी ड्रॉप मत करिए। मैं तो कह रहा था वर्ल्ड कप में भी खिलाओ यार, उन्होंने इतना कुछ गलत किया नहीं था, पर उनको बलि का बकरा बनाया गया, उनको ड्रॉप किया गया, वो दैट्स अ सेपरेट इशू। अब उम्मीद करता हूँ कि मैच खेलने का मौका मिलेगा। 2 नए नाम जो आपको सामने नजर आए, एक नवदीप सैनी, वो तो इस फॉर्मेट में है जो मुझे लग रहा है गलत फॉर्मेट में, उनको वनडे और टी20 नहीं खिलाना था, उनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी थी, वो उसके लिए बिल्कुल काबिल गेंदबाज है, लेकिन आपने उनको वनडे टी20 की टीम में रखा। जो बाकी 2 नाम की बात कर रहा हूँ वो है श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे। अय्यर अगर आप देख रहे हैं तो मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर 4-5-6 पे बैटिंग करने वाला कोई बैट्समैन है, तो वो आप उनकी तरफ देख सकते हैं। मनीष पांडे के बारे में आप क्या सोचेंगे कि पांडे जी को एक और लीज ऑफ लाइफ मिली है, क्योंकि इंडिया में प्रदर्शन अच्छा रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, तो चलिए आपने उनको एक और मौका दिया है, लेकिन कितनी देर तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल रहने वाला है। अन्यथा शुभमन गिल वॉज अ फैंटास्टिक टेम्पटिंग ऑप्शन थी, लेकिन उनके साथ समस्या की वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो नीचे शायद बैटिंग ना कर पाए, तो उस वजह से हो सकता है कि आपने उनको वहां पिक नहीं किया। कुल मिला के टीम मुझे तो ठीक लग रही है, बुमराह को आपने रेस्ट दिया, हार्दिक पंड्या इज अनअवेलेबल, वो भी थोड़ी फिटनेस के इशू है उनको, विजय शंकर का थोड़ा 50-50 है क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी पे कोई जवाब आया नहीं है। अब यू हैवंट हर्ड कि उनको प्रॉब्लम कितनी है, कब ठीक होगी, जैसे हार्दिक के बारे में था कि वो नहीं होंगे अवेलेबल, शिखर के बारे में है कि हो जाएंगे अवेलेबल, ऐसा कोई फिटनेस टेस्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन विजय शंकर के बारे में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है जो हमें समझ में आई नहीं अभी तक। उम्मीद यही करते हैं कि ये टीम अच्छा खेले, और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक अलग से बनाना होगा आकाशवाणी, क्योंकि मुझे लगता है लेकिन कहाँ जा रहा है उनका करियर, क्या वो करना चाहते हैं, वी शैल डिस्कस इट लेटर। बाय द वे दिस आकाशवाणी शॉट बाय आराधना चोपड़ा, 6 साल की बेटी कर रही है आजकल शूट, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहाँ बैठे हैं, इंटरलॉक ब्यूटीफुल आकाशवाणी आकाश यात्रा गोइंग हैंड इन हैंड।